नमस्कार। आज हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ विचार हैं जो नारी के आप कह सकते हैं कि बहुआयामी स्वरूप और उसके महत्व पर बात करते हैं। इन स्रोतों में नारी को कहीं तो भाई सृष्टिकर्ता की सबसे अद्भुत रचना बताया गया है, तो कहीं उसे समाज और परिवार की वो नींव कहा गया है। तो आज की इस चर्चा का मकसद है कि इन विचारों को थोड़ा थोड़ा और समझें, देखें कि इन स्रोतों में नारी के बारे में क्या खास कहा जा रहा है, उसकी दिव्यता, उसकी भूमिकाएं और क्यों उसके लिए न्याय और समानता की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
निश्चित रूप से, और ये स्रोत मतलब नारी को सिर्फ एक भौतिक इकाई नहीं मानते,
नहीं बल्कि
उसे चेतना, करुणा और रचने की शक्ति का एक प्रतीक मानते हैं। यहाँ जोर बाहरी सुंदरता पर उतना नहीं है जितना उसके भीतरी गुणों पर और समाज में उसके योगदान पर है।
हाँ, ये स्रोत बार बार कहते हैं कि नारी सृष्टा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है या एक जीवंत कलाकृति। क्या ये सिर्फ मतलब तारीफ है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? स्रोत कहते हैं स्नेह, करुणा, सृजनशीलता, ये सब उसके स्वभाव में है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे सिर्फ अलंकारिक न समझें। भारतीय संस्कृति में जैसा कि स्रोतों में भी आता है, उसे जगन माता यानी जगत की माँ का दर्जा दिया है, और वो श्लोक या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, उसका जिक्र भी है।
हाँ हाँ,
जिसका अर्थ है कि उस देवी को नमस्कार जो सभी प्राणियों में माँ के रूप में मौजूद है। तो ये उसके प्रति एक गहरी श्रद्धा, एक दिव्यता का भाव दिखाता है। उसे देवत्व की जीती जागती मूर्ति भी कहा गया है, मतलब उसके आंतरिक दैवीय गुणों की ओर इशारा है ये।
अच्छा, तो दिव्यता के इस पहलू से अगर हम आगे बढ़े तो ये स्रोत परिवार में नारी की भूमिका पर भी काफी जोर देते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि परिवार ईश्वर की बनाई संस्था है और नारी उसकी सूत्र संचालिका है। इस सूत्र संचालिका से क्या मतलब है इनका?
सूत्र संचालिका, हाँ, मतलब वो धुरी जिसके चारों ओर परिवार चलता है, जो उसे एक दिशा देती है। स्रोत बताते हैं कि पत्नी के रूप में वो एक नए परिवार की शुरुआत करती है, माँ बनकर उसका विस्तार करती है, और गृहिणी के तौर पर वो व्यवस्था बनाए रखती है। और ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, इन विचारों के मुताबिक नारी घर को स्वर्ग बना सकती है, इसीलिए उसे गृहलक्ष्मी कहा गया है।
गृहलक्ष्मी,
हाँ, और उसे कामधेनु और कल्पवृक्ष जैसी उपमाएं भी दी गई हैं।
अच्छा,
जैसे कामधेनु हर इच्छा पूरी करती है, कल्पवृक्ष सब कुछ देता है, वैसे ही नारी पोषण करती है, समाज को समृद्ध बनाती है। कम से कम इन स्रोतों का यही मानना है।
तो जहाँ एक तरफ उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, देवी कहा जा रहा है, गृह लक्ष्मी, वहीं कुछ स्रोत नारी की वरिष्ठता की भी बात करते हैं, मतलब पुरुष से श्रेष्ठ। लेकिन साथ ही एक बहुत मजबूत आवाज ये भी है कि नारी को बस एक परिपूर्ण मनुष्य माना जाए, न कम न ज्यादा, उसे सिर्फ न्याय चाहिए। या मुझे थोड़ा विरोधाभास सा लग रहा है।
हाँ, और स्रोत इस तनाव को दिखाते भी हैं। वे साफ तौर पर शोषण की, अन्याय की और नारी को केवल एक भोग की वस्तु समझने वाली सोच की निंदा करते हैं। उनका तर्क सीधा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव वो पूरी तरह गलत है, और नारी को उसके जो बुनियादी मानवीय अधिकार हैं वो मिलने ही चाहिए।
हाँ।
एक जगह तो समाज को चेतावनी भी दी गई है कि वो नारी के प्रति अदूरदर्शी नीति ना अपनाए और किसी भी अनीति से समझौता ना करे, यानी सिर्फ आदर्श बना देना काफी नहीं है, जमीनी हकीकत में न्याय चाहिए।
बिल्कुल, और इसी न्याय और समानता वाली बात से जुड़ता है वो आपसी निर्भरता का विचार। स्रोतों में नर और नारी को अक्सर गाड़ी के दो पहियों की तरह बताया गया है ना? जी हाँ,
जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
उदाहरण भी दिए हैं, जैसे विष्णु लक्ष्मी
या विचार और भाषा, ये दिखाने के लिए कि वो असल में एक ही इकाई के दो पहलू हैं।
बिल्कुल,
और ये सिर्फ कोई दार्शनिक एकता की बात नहीं है, ये व्यावहारिक प्रगति की शर्त भी है। इन लेखों के अनुसार आपसी तालमेल और सहयोग, जिसे सहकारिता कहा गया है, उसी से तरक्की संभव है।
अच्छा,
एक बहुत अहम बात कही गई है कि नारी को साथ लिए बिना प्रगति अधूरी है। ये साफ दिखाता है कि समाज की उन्नति के लिए दोनों का समान विकास, समान सम्मान और योगदान कितना जरूरी है।
तो इन सभी विचारों को अगर हम समेटें तो सार यही निकलता है कि इन स्रोतों में नारी सृजन का, दिव्यता का और सामाजिक स्थिरता का प्रतीक है, और उसे सिर्फ बाहरी रूप के लिए नहीं बल्कि उसकी जो आंतरिक शक्ति है, उसकी भूमिकाएं हैं समाज में, उसका जो योगदान है, उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। और समानता और न्याय, ये सिर्फ उसके अधिकार की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बेहतरी के लिए अनिवार्य है। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि नारी की गरिमा का सम्मान और उसके प्रति श्रद्धा, ये समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, और उसे कम आंकना, जैसा स्रोतों में कहा गया, एक अदूरदर्शी सोच है।
सही बात। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ये भरता है कि नारी का असली श्रृंगार वो बहने या बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि उसके मन की सफाई, स्वभाव की पवित्रता और उसके गुण है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हम अक्सर बाहरी चमक दमक में ही उलझ जाते हैं और जो असली मानवीय मूल्य हैं, जो आंतरिक सुंदरता है, उसे कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर देते।